नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बांका जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना किए जाने की घोषणा की। वसंत पंचमी का त्यौहार आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान जारी। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 8 फरवरी के बाद तापमान में गिरावट की संभावना। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन विधेयक 2024 के लिए गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट पेश की जाएगी। एक रिपोर्ट।
जेपीसी की अध्यक्ष जगदम्बिका पाल भाजपा सांसद संजय जायसवाल के साथ ये रिपोर्ट पेश करेंगे। वे संयुक्त समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्यों का रिकॉर्ड भी सदन के पटल पर रखेंगे। ये रिपोर्ट 30 जनवरी 2025 को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पहले ही सौंपी जा चुकी है। समिति में शामिल विपक्षी सदस्यों ने रिपोर्ट पर अपनी असहमति व्यक्त की है। इससे पहले जेपीसी ने वक्फ विधेयक 1995 में 14 खंडों और धाराओं सहित 25 संशोधन को मंजूरी दी थी। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बांका जिले के अमरपुर में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल खोला जाएगा। प्रगति यात्रा के क्रम में बांका पहुंचे मुख्यमंत्री ने जिले के कटोरिया में डिग्री कॉलेज खोलने की भी घोषणा की है। यात्रा के दौरान उन्होंने अमरपुर प्रखंड के राजपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए उपलब्ध 26 एकड़ जमीन का निरीक्षण किया और आसपास की सड़कों के चौड़ीकरण का निर्देश भी दिया। इस दौरान उन्होंने जिले में 362 करोड़ रुपए की लागत वाली विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा के अगले चरण में 5 फरवरी को मुंगेर, 6 फरवरी को लखीसराय और शेखपुरा तथा 7 फरवरी को जमुई जिले की यात्रा करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के क्रियान्वयन में बिहार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। श्री पांडे ने पटना में आयोजित आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन बिहार कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में 4,30,00,000 आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बन चुके हैं। उन्होंने कहा कि बिहार आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट बनाने वाले शीर्ष राज्यों में शामिल हो गया है।
1,79,00,000 टोकन का निर्माण इस हेमिडियम के तहत स्कैनेट शेयर में हुआ। उसी प्रकार से 4,30,00,000 लोगों का आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट आभा पे बन गया। मतलब हम अब कितनी तेजी के साथ पूरे देश में 43 करोड़ अकाउंट क्रिएट हुआ, उसमें 4.3 करोड़ बिहार में क्रिएट हुआ। तो हम ऑलमोस्ट जो पूरे देश में एवरेज चल रहा है उसी एवरेज के साथ हम भी चल रहे हैं। पूरे देश ने जितना किया उसका 10% बिहार ने किया, मतलब हम इसमें भी आगे चल रहे हैं।
स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि आयुष्मान भारत लागू होने के बाद से अब तक लोगों के इलाज पर इस कार्यक्रम के तहत 2200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। वसंत पंचमी का त्यौहार आज प्रदेश भर में धार्मिक श्रद्धा, आस्था और पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। माघ शुक्ल पंचमी का ये दिन ज्ञान, विवेक, कला और संगीत की देवी सरस्वती की उपासना का दिन है। इस अवसर पर बच्चों का विद्यारंभ कराने की परंपरा है। वसंत पंचमी से ऋतुराज वसंत के आगमन की आहट मिलने लगती है और प्रकृति एक नया रूप धारण करती है। सरस्वती पूजा के अवसर पर विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में माँ सरस्वती की प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की जा रही है। माँ सरस्वती की प्रतिमा के साथ विभिन्न पंडालों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। हर तरफ माहौल भक्तिमय है। इस त्योहार को लेकर स्कूली बच्चों में खास उत्साह देखा जा रहा है। वसंत पंचमी के मौके पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। वहीं इस दौरान सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पटना के एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि पूजा को लेकर स्थानीय थानों को सतर्क कर दिया गया है और प्रमुख जगहों पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि राजधानी पटना में स्थानीय पुलिस के अलावा रैफ की एक और बिहार सशस्त्र पुलिस की 5 कंपनियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। श्री कुमार ने कहा कि विसर्जन के दौरान जुलूस निकालने और डीजे बजाने पर प्रतिबंध रहेगा। और अब खबरें महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में वसंत पंचमी के अवसर पर महाकुंभ का तीसरा अमृत स्नान जारी है। यह स्नान महाकुंभ मेले का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र अनुष्ठान है। इससे पहले 2 अमृत स्नान 14 जनवरी मकर संक्रांति और 29 जनवरी मौनी अमावस्या को हुए थे। अमृत स्नान को लेकर प्रयागराज में सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक मजबूत सुरक्षा योजना लागू की है और महाकुंभ के मेला क्षेत्र को नो व्हीकल और नो वीआईपी जोन घोषित किया गया है। सरकार ने मेला क्षेत्र में 11 संवेदनशील स्थान तय किए हैं। विश्व के सबसे बड़े धार्मिक समागम के रूप में पहचाने जाने वाले महाकुंभ मेले की शुरुआत 13 जनवरी को हुई और अब तक 35 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna पर जा सकते हैं। वसंत के आगमन के साथ ही प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अधिकतम तापमान भी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि 8 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से प्रदेश में मौसम में बदलाव की संभावना है।
3 एवं 8 फरवरी 2025 को 2 पश्चिमी विक्षोभ पश्चिम भारत को प्रभावित करने की संभावना है। अगले 3-4 दिनों तक राज्य के न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड की वृद्धि दर्ज करने का एवं तत्पश्चात तापमान में गिरावट का पूर्वानुमान है।
केंद्रीय बजट में मखाना बोर्ड के गठन की पहल का बिहार के मखाना उत्पादक किसानों ने स्वागत किया है। राज्य में 10 से अधिक जिले मखाना उत्पादक श्रेणी में आते हैं। मिथिलांचल का क्षेत्र इसमें अग्रणी है। सुपर फूड की श्रेणी में शामिल मखाना का देश में मुख्य उत्पादक बिहार है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में किसानों ने कहा है कि मखाना बोर्ड के गठन से इसकी कीमतों के नियंत्रण और उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।
आदर्श कुमार, मैं हरदा से हूँ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट, और मैं मखाना उत्पादक हूँ। तो ये बोर्ड के गठन से जो है के वजह से जो है कि सबसे पहले किसान और खोड़ी वाले जो है उसको सबसे बड़ा बूस्टअप मिलेगा, जिसके कारण क्या है कि मखाना का रेट जो आगे पीछे इतना ज्यादा हो रहा है जिससे छोटे किसान को जो है बहुत दिक्कत हो जाता है। बोर्ड का गठन होने के कारण एक रेट सीमित रहेगा। मैं चाहता हूँ कि बीज का जो सीड का जो है इसमें थोड़ा सा इसमें रिसर्च किया जाए सीड के लिए कि जिसके पैदावार ज्यादा हो, इम्पोर्ट इम्पोर्ट में थोड़ा सा बीज का जो बढ़िया सीड का जो अच्छा उपजाऊ होगा जिसके कारण हम लोग माल का प्रोडक्शन बढ़ा, और तकनीकी मशीन का भी थोड़ा सा इसमें हम लोग को जरूरत पड़ेगा तो जिससे जो है कि हम लोग वर्क कर पाएंगे।
कृषि वैज्ञानिकों ने भी कहा है कि मखाना बोर्ड के गठन से किसानों को तकनीकी मदद मिलेगी, इसके निर्यात और प्रसंस्करण में अच्छी तकनीक आएगी। वैज्ञानिक श्याम नारायण झा ने कहा कि इस पहल से मखाना का मूल्य संवर्धन होगा।
मखाना के उद्योग को बहुत फायदा होगा, खेती बाड़ी, और उससे किसानों को जो ट्रेनिंग मिलेगा, पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन पर ज्यादा काम होगा, व्यापार ज्यादा बढ़ेगा, और उससे आमदनी बिहार का काफी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो सारे लोगों को उससे फायदा होगा।
राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा है कि महिलाओं की शिक्षा के बिना समाज का विकास संभव नहीं है। पटना वीमेंस कॉलेज के वार्षिक समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं को शिक्षित करके ही हम शांतिपूर्ण, सहिष्णुतापूर्ण, न्यायपूर्ण और बेहतर दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। वाणिज्य कर विभाग की टीम ने पटना समेत 4 जिलों में 10 अलग अलग व्यवसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। इस दौरान 6.5 करोड़ रूपये की बिक्री छुपाने के सबूत मिले हैं, साथ ही 2.5 करोड़ का अवैध सामान भी जब्त किया गया है। यह कार्रवाई वाणिज्य कर विभाग के सचिव सह आयुक्त संजय कुमार सिंह के निर्देश पर अलग अलग टीमों द्वारा की गई। इन टीमों ने पटना में 5, गया में 3 और दरभंगा तथा जहानाबाद में 1-1 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर छापेमारी की। ये प्रतिष्ठान पान मसाला, हार्डवेयर, ड्राई फ्रूट्स, आयरन और स्टील की बिक्री से जुड़े हैं। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति अप्रैल महीने में विशेष परीक्षा का आयोजन करेगी। मैट्रिक और इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने से वंचित विद्यार्थियों को विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। बिहार बोर्ड ने कहा है कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा का रिजल्ट जारी होने के 1 सप्ताह बाद ही कंपार्टमेंटल सह विशेष परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बोर्ड ने कहा कि इंटरमीडिएट और मैट्रिक की परीक्षा के दौरान सेंटर पर विलंब से पहुंचने के कारण परीक्षा से वंचित रह गए विद्यार्थियों को भी विशेष परीक्षा में शामिल होने का मौका मिलेगा। बिहार पुलिस में सिपाही की बहाली को लेकर चल रही दूसरे चरण की शारीरिक दक्षता परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के दौरान पिछले सप्ताह 9 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार इन अभ्यर्थियों के खिलाफ गर्दनीबाग थाने में मामला दर्ज कराया गया है। गौरतलब है कि पटना के गर्दनीबाग स्थित पटना हाई स्कूल में अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा और प्रमाण पत्र सत्यापन का काम हो रहा है। देहरादून में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में बिहार के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। लॉन बॉल महिला 4 स्पर्धा में बिहार की टीम ने मेजबान उत्तराखंड को 11-9 से पराजित कर अगले दौर में जगह बना ली है। वहीं अंडर 25 पुरुष वर्ग में जमील अहमद ने पश्चिम बंगाल के खिलाड़ी को 21-16 से पराजित कर दिया। इधर तीरंदाजी के इंडियन राउंड के रैंकिंग मुकाबले में बिहार के 4 खिलाड़ियों जयप्रकाश, निर्भय कुमार सिंह, सपना और सोनी कुमारी ने फाइनल मुकाबलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के हवाले से लिखा है, पुरानी कर व्यवस्था जारी रहेगी। दैनिक जागरण ने भी बजट के प्रभाव से जुड़ी खबर को तरजीह देते हुए लिखा है, मध्यम वर्ग की जेब में आएंगे 1,00,000 करोड़, पैदा होगी 3,03,000 करोड़ की मांग। दैनिक भास्कर मौसम की खबर पर लिखता है, पटना समेत 36 जिलों का न्यूनतम पारा 10 डिग्री के पार हुआ। प्रभात खबर का शीर्षक है, प्रगति यात्रा के दौरान सीएम राजधानी पटना को देंगे 3 सौगात। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, बांका के कटोरिया में होगा औद्योगिक क्षेत्र का विकास। आज अखबार की सुर्खी है, महाकुंभ का 3रा अमृत स्नान आज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वक्फ संशोधन विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति आज अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रगति यात्रा के दौरान बांका जिले में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की स्थापना किए जाने की घोषणा की। वसंत पंचमी का त्यौहार आज धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर प्रयागराज महाकुंभ में अमृत स्नान जारी। और प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर तापमान में बढ़ोतरी। मौसम विभाग ने कहा, पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 8 फरवरी के बाद तापमान में गिरावट की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।